लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि शिक्षक विश्वसनीय गवाह बने, प्रतिस्पर्धा के बजाय भ्रातृत्व सिखाएं और सबसे कम उम्र के लोगों एवं सर्वाधिक कमजोर लोगों की मदद करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में 16 से 20 जनवरी तक चली। इस वर्ष की बैठक का विषय था खंडित विश्व में सहयोग। इसमें शिक्षाविद, निवेशक, राजनीतिक और व्यापारिक नेता और अन्य विशेषज्ञ बैठक में भाग लिया और विश्व के सामने खड़ी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने बुधवार 18 जनवरी को विश्व आर्थिक मंच की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन में युद्धग्रस्त पक्षों के बीच शांति के लिए गंभीर वार्ता आयोजित करने का अवसर फिलहाल अभी हासिल नहीं हो पाया है। उन्होंने विश्व में मौजूदा हालात की एक कटु तस्वीर प्रस्तुत करते हुए आगाह किया कि वैश्विक समस्याओं के समाधानों के रास्ते दरारों से पटे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दावोस में आगाह किया कि दुनिया भू राजनैतिक विभाजन और भरोसे की कमी के गंभीरतम स्तर का सामना कर रही है, जो कि पहले कई पीढ़ियों में नहीं देखा गया। उन्होंने मौजूदा संकट की विकरालता को बयां करते हुए कहा,
We can't confront problems unless we look them squarely in the eye. And we are looking into the eye of a category 5 hurricane.
महासचिव गुटेरेस कह रहे थे कि हम समस्याओं का तब तक सामना नहीं कर सकते हैं जब तक उन्हें सीधे आंख मिलाकर ना देखें, और हम श्रेणी 5 के चक्रवाती तूफान का सामना कर रहे हैं। यूएन प्रमुख के अनुसार फिलहाल यूक्रेन और रूस के बीच एक गंभीर शांति वार्ता होने का अवसर नजर नहीं आता। यूएन महासचिव ने विश्व नेताओं के नाम एक अपील जारी करते हुए कहा कि हर नया सप्ताह एक भयावह नई जलवायु व्यथा लेकर आता है, इसलिए जलवायु संकट को नजरअंदाज करने से बचा जाना होगा। साथ ही उन्होंने निजी सेक्टर से भी कारगर कार्रवाई में हिस्सा लेने की अपील की है। यूएन प्रमुख ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भरोसे का निर्माण करने की पुकार लगाई और चिंता व्यक्त की कि अमेरिका और चीन में पनपी दरारें विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से अलग कर सकती हैं। उनके अनुसार इस दूरी से वैश्विक अर्थव्यवस्था को करीब 1,500 अरब डॉलर की चपत लगेगी। दुनिया में दो प्रकार के व्यापार नियम होंगे, दो मुद्राओं का दबदबा होगा। महासचिव ने जोर देकर कहा कि ऐसा होने से रोकना होगा। उन्होंने सचेत किया कि विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई गहरी हो रही है, क्योंकि कोविड-19 टीका वितरण और महामारी से उबरने में पसरी विषमता के प्रति क्रोध व्याप्त है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि महामारी से पुनर्बहाली मुख्य रूप से संपन्न देशों में ही केंद्रित है।
मंगलवार 17 जनवरी को प्रकाशित यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार देशों की सरकारें उन बच्चों में पर्याप्त संसाधन निवेश नहीं कर रही हैं जिन्हें शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है। निर्धन बच्चों का सार्वजनिक शिक्षा खर्च अधिक प्राप्त करने वाली ऊंची शिक्षा में भी निर्धन बच्चों का प्रतिनिधित्व कम है। 102 देशों के आंकड़ों की जांच करने वाले इस अध्ययन से पता चलता है कि सबसे गरीब शिक्षार्थियों की तुलना में धनी परिवारों के बच्चों को सार्वजनिक शिक्षा निधि की राशि का 6 गुना अधिक लाभ मिलता है। इस रिपोर्ट में प्रत्येक शिक्षार्थी तक शिक्षा संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्यवाही का आह्वान किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रही है शिवानी काला।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने कहा है कि देशों की सरकारें उन बच्चों में पर्याप्त संसाधन निवेश नहीं कर रही हैं जिन्हें शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है। वर्तमान में 20% निर्धनतम शिक्षार्थियों को शिक्षा के लिए केवल 16% सार्वजनिक धनराशि का लाभ ही मिल पाता है, जबकि सबसे धनी शिक्षार्थी इससे 28% तक लाभान्वित होते हैं। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशिका कैथरीन रसेल का कहना है कि सबसे निर्धन बच्चों की शिक्षा में संसाधन निवेश करना ही बच्चों, समुदायों और देशों का भविष्य सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। वास्तविक प्रगति तभी हो सकती है जब हम हर जगह हर बच्चे में निवेश करें। दुनिया भर में सार्वजनिक शिक्षा खर्च के धनी परिवारों के शिक्षार्थियों तक पहुंचने की अधिक संभावना रहती है और यह स्थिति निम्न व मध्यम आय वाले दोनों देशों में समान है। यूनिसेफ के अनुसार कम आय वाले देशों में यह अंतर सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट में प्रत्येक शिक्षार्थी तक शिक्षा संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की महानिदेशक आड्री अजूले ने इस वर्ष 24 जनवरी को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जिसकी थीम हम व्यक्तियों में निवेश करें, शिक्षा को प्राथमिकता दें, को अफगान की लड़कियों व महिलाओं के लिए समर्पित किया है, जिन्हें सीखने, अध्ययन करने और पढ़ाने के उनके अधिकार से वंचित किया गया है। यूएन एजेंसी ने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान में सभी लड़कियों व युवा महिलाओं की स्कूलों व विश्वविद्यालयों में वापसी और उनके लिए शिक्षा अवसरों की सुलभता सुनिश्चित की जानी होगी। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
यूनेस्को का कहना है कि शिक्षा सर्वजन का अधिकार है, मगर अफगानिस्तान में लड़कियों व महिलाओं को इस बुनियादी अधिकार से वंचित कर दिया गया है और उन्हें माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। यूनेस्को की महानिदेशिका ऑड्री अजूले ने आगाह किया कि दुनिया में किसी भी देश को महिलाओं व लड़कियों के लिए शिक्षा पर रोक नहीं लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक सार्वभौमिक मानवाधिकार है जिसका सम्मान किया जाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का यह दायित्व है कि अफगान लड़कियों व महिलाओं के अधिकार बिना देरी के बहाल किए जाएं। ऑड्री अजूले ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध लड़ाई को रोका जाना होगा। अफगानिस्तान में वर्ष 2001 से 2018 के दौरान उच्चतर शिक्षा केंद्रों में महिलाओं की संख्या में 20 गुना वृद्धि दर्ज की गई थी, मगर अगस्त 2021 में देश की सत्ता पर तालिबान का नियंत्रण होने के बाद सितंबर में 12 वर्ष से अधिक आयु की सभी लड़कियों की स्कूलों में वापसी को अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया गया था। इससे 11 लाख लड़कियों और युवा महिलाओं के लिए औपचारिक शिक्षा के अवसर दूर हो गए। गत दिसंबर में महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्ति पर भी अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी गई, जिससे सरकारी और निजी उच्चतर शिक्षा केंद्रों में शिक्षा हासिल कर रही 1 लाख से अधिक छात्राओं पर असर पड़ा है। यूनेस्को के अनुसार शिक्षा पर पाबंदी के इस निर्णय के बाद अफगानिस्तान में विशाल चुनौतियों के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति दर्ज की गई थी उसके पलट जाने का खतरा है।
यूनेस्को के अनुसार वर्ष 2019 से 2021 तक दुनिया भर में पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के मारे जाने के मामलों में गिरावट के बाद अब वर्ष 2022 में इस संख्या में वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2022 में सशस्त्र संघर्ष वाले देशों में मौत के मुंह में ढकेले जाने वाले पत्रकारों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 20 थी। कुछ पत्रकारों को सुनिश्चित अपराध, सशस्त्र संघर्ष या बढ़ती चरमपंथी घटनाओं पर उनकी पत्रकारिता के कारण मार दिया गया और अन्य मीडिया कर्मी भ्रष्टाचार, पर्यावरणीय अपराध, सत्ता के दुरुपयोग और विरोध जैसे संवेदनशील विषयों पर रिपोर्टिंग करने के कारण मौत के मुंह में धकेल दिए गए। आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वैटिकन स्थित प्रेरितिक अदालत रोता रोमाना के धर्माधिकारियों से शुक्रवार को मुलाकात करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने अदालत के सांकाय अध्यक्ष को उनके विनम्र शब्दों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया तथा प्रेरितिक अदालत में कार्यरत समस्त प्रशासनाधिकारियों का सौहार्दपूर्वक अभिवादन किया। विश्वासियों की सेवा में उनके काम, विशेष रूप से विवाह प्रक्रियाओं के संदर्भ में रोता रोमाना के अधिकारियों के काम की संत पापा ने सराहना की। उन्होंने कहा कि आज कलीसिया तथा विश्व में एक पुरुष और एक महिला के बीच वैवाहिक मिलन के अर्थ और मूल्य को फिर से खोजने की सख्त जरूरत है, जिस पर परिवार की स्थापना होती है। वास्तव में इतने सारे परिवारों को प्रभावित करने वाले संकट का निश्चित रूप से महत्वपूर्ण पहलू विवाह के बारे में व्यावहारिक, व्यक्तिगत और सामूहिक अज्ञानता है। संत पापा ने कहा कि कलीसिया ने प्रभु येसु ख्रीस्त से सुसमाचार प्रचार का मिशन पाया है, जो वैवाहिक और पारिवारिक प्रेम के महान रहस्य को भी प्रकाशित करता है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि कैथोलिक कलीसिया परिवार की सेवा को अपने आवश्यक कार्यों में से एक मानती है। इस अर्थ में व्यक्ति और परिवार दोनों कलीसिया का मार्ग प्रशस्त करते हैं। परिवार का सुसमाचार पुरुष और स्त्री के निर्माण की दिव्य योजना को संदर्भित करता है, जो कि आदिकाल से है। संत मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार प्रभु येसु के शब्दों में, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के प्रेरितिक उद्बोधन फमिलियारिस कंसोर्सियो के शब्दों का स्मरण दिलाते हुए संत पापा फ्रांसिस ने कहा, मसीह उस आदि योजना को नवीकृत करते हैं जिसे निर्माता ने स्त्री और पुरुष के हृदय में अंकित किया है, और ऐसा कर वे विवाह संस्कार के उत्सव में एक नया हृदय प्रदान करते हैं। इस प्रकार न केवल पति पत्नी हृदय की कठोरता को दूर करते, बल्कि साथ ही और सबसे बढ़कर वे मसीह के पूर्ण, नवीन और शाश्वत संधि से बने निश्चित प्रेम को साझा करने में सक्षम बनते हैं। विवाह संस्कार के महत्व को समझाते हुए संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि ख्रिस्तीय रहस्योद्घाटन के अनुसार विवाह कोई समारोह या सामाजिक घटना नहीं है, न ही यह एक औपचारिकता है। यह एक अमूर्त आदर्श भी नहीं है। यह अपनी सटीक स्थिरता के साथ एक वास्तविकता है, न कि भावनात्मक संतुष्टि का एक रूप जिसे किसी भी तरह से गठित किया जा सके और हर किसी की संवेदनशीलता के अनुसार संशोधित किया जा सके। संत पापा फ्रांसिस ने गुरुवार को वैटिकन में इटालियन एसोसिएशन ऑफ फाउंडेशंस एंड फिलैंथ्रोपिक बॉडीज नामक समाज सेवी न्यास 80 फेरों के सदस्यों से मुलाकात कर उनसे आग्रह किया कि वे व्यक्ति को बढ़ावा देने तथा स्वस्थ और सहायक सामाजिक एवं आर्थिक मॉडल विकसित करने हेतु काम करें। समाज सेवी न्यास 80 फेरों की स्थापना की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वैटिकन और रोम की भेंट करने आए सदस्यों से संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि मानव व्यक्ति की गरिमा को बरकरार रखना, मानव व्यक्ति को प्रोत्साहन देना और व्यक्ति के अखंड विकास हेतु काम करना, वे तीन मूलभूत मूल्य हैं जिन पर समाज सेवी अपना मिशन केंद्रित रखें। विगत वर्षों के अंतराल में उक्त न्यास के सदस्यों द्वारा संपन्न कार्यों की संत पापा ने भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि ये कार्य स्पष्ट रूप से ख्रिस्तीय प्रेरित दृष्टिकोण के साथ संपादित किए गए थे। मानव व्यक्ति के अखंड और अभिन्न कल्याण का अर्थ समझाते हुए संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि इसका अर्थ केवल भौतिक सहायता नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य लोगों के उत्थान में मदद देना है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर और सामुदायिक स्तर पर भी लोगों की क्षमताओं को पहचान कर उसकी वृद्धि करना यथार्थ उत्थान और यथार्थ विकास का कार्य है। स्थानीय लोगों की सुनने के विषय में संत पापा ने कहा कि स्थानीय वास्तविकताओं को सुनने के बिना आप स्थानीय लोगों की बात नहीं सुन पाएंगे। उन्होंने कहा, यह अति महत्वपूर्ण है कि आपका हस्तक्षेप छिटपुट मदद के लिए न हो, बल्कि भविष्य के लिए बीज आरोपित करे जहां लोग रहते हैं। सबसे गौण के निकट के महत्व को समझाते हुए संत पापा ने उस कहावत का स्मरण दिलाया जिसमें कहा गया है कि एक जंजीर केवल उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। उन्होंने कहा कि उन लोगों के करीब होना जो गौण है, जो कम से कम है, उनके घावों पर झुकना, उनकी जरूरतों को पूरा करना एक बेहतर विश्व और शांति के भविष्य के लिए एकजुट समुदायों के निर्माण हेतु एक ठोस नींव रखना है। संत पापा फ्रांसिस ने होंडुरास में तेगुचिकाल्पा के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल ऑस्कर मारादिगा का त्याग पत्र स्वीकार कर उनके स्थान पर पल्ली पुरोहित फादर होसे विंसेंट नाखेर ताताए को कार्डिनल का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया है। विगत 29 दिसंबर को कार्डिनल ऑस्कर मारादिगा ने 80 वर्ष की उम्र पूरी कर ली थी। 2013 से कार्डिनल मारादिगा कार्डिनल मंडल के समन्वयकर्ता और परामर्शदाता पद पर काम करते रहे थे। फादर विंसेंट नाखेर होंडुरास स्थित सान पेद्रो सुला शहर में पल्ली पुरोहित तथा संत विंसेंट को समर्पित धर्म समाज के प्रांतीय अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे थे। संत पापा फ्रांसिस के साथ बुधवार को मुलाकात के उपरांत गुरुवार को यूक्रेन की कलीसियाओं और धार्मिक संगठनों की अखिल परिषद के प्रतिनिधियों ने वेटिकन में अपनी 3 दिवसीय भेंट समाप्त की। कीव के ग्रीक कैथोलिक महाधर्माध्यक्ष स्वियातोस्लाव शेवचुक के अनुसार स्थिति बदतर होती जा रही है, बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है और हम अंधेरे में जी रहे हैं। उन्होंने कहा, हम धार्मिक नेताओं को चाहिए कि हम शांति की शिक्षा दें, लेकिन सत्य और न्याय के बिना शांति संभव नहीं। वैटिकन की 3 दिवसीय भेंट के उपरांत वैटिकन रेडियो के मुख्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए महाधर्माध्यक्ष शिवचुक ने कहा कि यूक्रेन में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा, हम यूक्रेनी समाज के दर्पण के रूप में आए हैं, हम एक बहुजातीय और बहुधार्मिक देश हैं। उन्होंने कहा, हम नहीं जानते कि युद्ध कब खत्म होगा, लेकिन स्थिति बहुत खराब है। आज ही 20 से अधिक रूसी मिसाइलों ने कीव को निशाना बनाया। महाधर्माध्यक्ष शेवचुक ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि युद्ध हमेशा मानवता के लिए एक हार है, यह हमेशा एक भयावहता है, तथापि हम आत्मरक्षा के लिए मजबूर हैं, जो किसी भी मामले में अनुपातिक होना चाहिए। वैटिकन राज सचिव कार्डिनल पेत्रो पारोलिन के साथ बातचीत में उन्होंने जो बात कही थी उसी को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि एक न्यायोचित शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं से रूस की वापसी और जो नष्ट हो गया है उसका पुनर्निर्माण करना जरूरी है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।